tanıyacak Exclusive Interviews. Exclusive Interviews के इस कार्यक्रम में आज सुनिए कई क्षेत्रों में अग्रणी और मशरूम उत्पादक श्रीमती नम्रता घई से संगीता अग्रवाल की बातचीत। अल्फा नदी की बहती धारा के साथ आज हम फिर बढ़ते हैं एक कदम रोशनी की ओर। श्रोताओं, मैं हूँ संगीता अग्रवाल और आज हमें मौका मिला है मशरूम गर्ल ऑफ छत्तीसगढ़ से बात करने का। जी हाँ, श्रीमती नम्रता घई जी से। नमस्कार नम्रता जी, हमारे अर्पा रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी नमस्कार, और आपके अर्पा के श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
जी, जैसा कि मैं देख रही थी आपकी ढेर सारी क्वालिफिकेशन है, आप केमिस्ट्री में एमएससी भी हैं और इंग्लिश और फ्रेंच में भी आपकी पकड़ है, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोर्स आपने किया है। मुझे लगता है कि शुरू से ही आपका पढ़ाई के प्रति काफी रुझान रहा है।
जी, ऐसा लगता है कि जीवन में शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है आगे बढ़ने का, और पढ़ाई में रुचि मुझे शुरू से रही है, और मेरे माता पिता का भी यही था कि बच्चों को काफी अच्छा पढ़ना चाहिए, और मेरे घर में बेटा या बेटी करके पालन पोषण नहीं हुआ, इस तरह से इतना अच्छा पालन पोषण हुआ और आज शिक्षा हर जगह काम आ रही है। तो मैं श्रोताओं से भी कहना चाहूंगी कि शिक्षा जो है वो ही हमें जीवन में आगे बढ़ाती है।
बहुत अच्छी बात है। तो मशरूम के लिए काम किया जाना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में कैसे आई? क्योंकि मुझे लगता है जिस समय आपने शुरू किया उस समय मशरूम प्रचलन में नहीं था।
मुझे बचपन से जो हमारे नेचुरल मशरूम आते हैं वो खाने में बहुत पसंद थे, और मेरे पिताजी कहा करते थे ये हाई प्रोटीन डाइट होता है, इसको जरूर खाया करो, और वो सीजनल मिलते थे। तो जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग में भोपाल में थी तो वहां मैंने पहली बार जाना कि अब मशरूम की खेती भी होती है, तो मैंने वहीं से सब सर्च करना शुरू किया और विभिन्न जगह देखी जहां मशरूम की खेती प्रारंभ हो चुकी थी। फिर जब रायपुर वापस आई भोपाल से तो यहां मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज से जानकारी इकट्ठा की और बहुत छोटे पैमाने पर मशरूम उगाना घर पर ही शुरू किया। मेरे साथ ये अच्छी बात रही कि मैंने जो भी मशरूम शुरू से उगाया उसको मैंने शुरू से बेचने का प्रयास किया, और उस समय भी मशरूम कम पड़ता था और अभी भी मशरूम कम पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम को सीखें और समाज के लिए एक अच्छा खाद्य पदार्थ का उत्पादन करें।
जी, आप ये बताइए कि ये कितने साल पहले की बात है, यदि आपको याद हो सन तो जरूर हमारे श्रोताओं को बताइए।
जी, मैंने 1991-92 से मशरूम की खेती के बारे में जानना और सीखना शुरू किया, और जो मेरा नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ मशरूम के नाम से मशरूम उत्पादन की इकाई है, यहाँ 1995 से काम कर रही हूँ। उस समय छत्तीसगढ़ भी नहीं बना था और नया रायपुर का तो नामो निशान नहीं था, तो उस समय से मैं यहाँ रायपुर से आना और काम प्रारंभ किया, और उस समय भी आनंद आता था और अभी भी आनंद आता है काम करने में।
जी, और हमें ये भी जानकारी मिली है कि आप भी आप अपनी रिसर्च जारी रखी हुई है, तो इस क्षेत्र में आपकी तलाश किन संभावनाओं की ओर है?
मेरा ऐसा मानना है कि मशरूम उत्पादन बहुत ही इको फ्रेंडली कार्य है। हम जो कृषि कार्य करते हैं उसका जो अवशिष्ट बचता है, जो धान का पैरा है, गेहूं का भूसा है, सोयाबीन का है, हम उसी में मशरूम का उत्पादन करते हैं, तो इसका रॉ मटेरियल आज खेती के कारण हमको आसानी से उपलब्ध है। हम उसमें इतना अच्छा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स युक्त खाद्य पदार्थ जिसे हम मशरूम कहते हैं पैदा करते हैं, और उसके बाद सोसाइटी को हम एक अच्छी स्वास्थ्य भी परोसते हैं साथ में। तो कृषि अवशेष का पुनर्चक्रण और एक स्वास्थ्यगत चीज, उसके बाद हम आखिरी में उसका कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाकर वापस हम अपने खेत को वापस करते हैं। तो इतना अच्छा कार्य है, तो ज्यादा से ज्यादा किसान वर्ग को भी, महिलाओं को और एंटरप्रेनर्स को भी इस काम में आगे आना चाहिए, और मेरा जो आगे का उद्देश्य है वो कुछ मेडिसिनल मशरूम पे मैं अभी काम कर रही हूँ, कुछ मेडिसिनल मशरूम को मैं पैदा करना चाहती हूँ ताकि हमारा कृषि अवशेष का तो पुनर्चक्रण हो और हमको एक ऐसे खाद्य पदार्थ मिले जो हमारे स्वास्थ्य को बिना दवाई खाए अच्छा रखने में मदद करे।
बहुत ही अच्छा, एक तो आपने बहुत ही नई दिशा में आपने काम किया और ये पूरी तरह से समाज के लिए प्रेरणादायक है कि उनके आज न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत है।
तो जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि मशरूम जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल में भी अब उपयोग हो रहा है, और आने वाला समय में हम इसे फ्यूचर फूड का नाम भी दिए हुए हैं। कि हमको आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए हर किसी को मशरूम को अपने भोजन का अंग बनाना ही पड़ेगा।
बहुत ही अच्छी बात है। और मशरूम से मशहूर हो गए, आपके लिए यदि ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो इसके बारे में भी मैं सर्च कर रही थी न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। आप प्लीज हमें, हमारे श्रोताओं के इसके बारे में बताइए।
जी, जो एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि वो जो बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ज्यादा बनने नहीं देते, जो बहुत सारी बीमारियों के कारण होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट कलर्ड वेजिटेबल्स हुआ, और हमारे पास अब कलर्ड मशरूम भी उगता है, इनमें ये ज्यादा होते हैं, ये एंटी कैंसरस भी होते हैं। तो डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थ को हमको अपने भोजन में रोज ही स्थान देना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा सर्च किया, और मशरूम से मशहूर वाली बात कहने के लिए आपको धन्यवाद। ये बात सही है कि चूंकि मैं अपनी कंट्री में पायनियर में से एक हूँ मशरूम की खेती में, और सबसे खास बात की मैंने इसको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की है। दिक्कतें आई, नया काम शुरू करो तो दिक्कतें आती हैं, पर लगातार एक रिसर्च स्कॉलर की तरह काम में लगे रहो तो निश्चित तौर पर परिणाम भी मिलते हैं।
जब हम अपने काम में मशगूल हो जाते तो परेशानियाँ फिर मायने नहीं रखती हैं।
जी, मैं आजकल इतना समय हो गया काम करते हैं, इसको परेशानी न मान के जीवन का अंग मानने लगी हूँ।
जी हाँ, तो आप ये भी बताइए हमारे श्रोताओं को कि हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में इस मशरूम की खेती को वो कैसे कर सकते हैं और किस तरह हम बढ़ावा दे सकते हैं इन्हें।
जो लोगों के पास खेती किसानी की जमीन, जिसको हम एग्रीकल्चर लैंड बोलते हैं, और धान की खेती या गेहूँ की खेती होती है, वैसे लोगों को तो अब ये मशरूम की खेती सीखना है। इसके लिए जो पास में कृषि महाविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ भी जाके सीख सकते हैं, जैसे ऑनलाइन में हम भी हैं, छत्तीसगढ़ मशरूम ऑनलाइन में है, और भी चीजें आपको ऑनलाइन में जानकारी मिलती है। पर मेरे सलाह ये है कि एक बार प्रैक्टिकल जाके सीखना चाहिए, चाहे वो कोई हमारे जैसा प्राइवेट जगह हो तो भी आके सीख सकते हैं, और अगर वो सरकारी संबंधित संस्थान में भी मशरूम की खेती की जानकारी है, और निश्चित तौर पर जो शिक्षित लोग इसको सीखते हैं तो इसको बढ़ावा मिले।
बहुत अच्छी बात बताई आपने, और बिल्कुल हमें नई चीजों को सीखने के लिए अपना रास्ता खुला रखना चाहिए। और फिर एक मैं बहुत 10 साल पहले की आपकी बातों को याद दिलाना चाहूंगी, कभी आप हॉट सीट में थी अमिताभ बच्चन के सामने, कौन बनेगा करोड़पति में।
ये बहुत ही अच्छा जीवन का अनुभव था, शायद मशरूम ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया है, कभी कभी सोचती हूँ। जो बहुत अच्छा अनुभव रहा, वहाँ जाके जो मैंने पैसा जीता, और एक अच्छी बात थी कि बहुत यंग लोग भी थे, लेकिन फास्टेस्ट सिंगल फर्स्ट में मैं अपने ग्रुप में पहले सेलेक्ट हुई, और 10 में से पहले बैठना और एक नया रोमांचक अनुभव अमिताभ बच्चन जी सामने में, इतने बहुत ही हम्बल है वो, आपको बहुत कम्फर्टेबल फील कराते हैं। और उस शो में जाके मेरी दो भावनाएं बहुत स्ट्रांग हुई, विशेष रूप से श्रोताओं को बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है और लालच को भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत मजा आया उसको खेलने में, अभी भी ऐसा लगता है कि सपने जैसा है, और मौका मिला तो दोबारा दूं ऐसा फील होता है।
आपके काफी सारे अनुभव और भी हम जानना चाहेंगे, आप तो एनसीसी कैडेट भी रही हैं और शायद बेस्ट आपको अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, तो ये बताइए कि आपकी इतनी सारी बहुमुखी प्रतिभा का हमें बताइए उसके बारे में।
देखिए, जब आप किसी क्षेत्र में अच्छा काम करके जाते हैं तो हमारा देश, और लार्ज स्केल पे कहूँ तो हमारी पृथ्वी बहुत ही असली में हमारा घर है और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके काम को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर वो सम्मान के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो बड़ा अच्छा लगा कि मुझे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईसीआर सेंटर ने, जो हिमाचल प्रदेश में, सभी ने सम्मान दिया। मुझे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ईओ से मिला है, और समय पे छत्तीसगढ़ राज्य के भी विभिन्न विभागों ने सम्मानित किया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर और अपने प्रदेश स्तर के अलावा मैं कृषि विभाग से एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, नीति आयोग में भी मुझे चयनित करके ऐसे एंटरप्रेनर बुलाया गया। तो ये इस तरह के सम्मान सीखने बहुत मिलता है। मैं श्रोताओं से कहूंगी कि हम जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में किसी भी कारण से जाते हैं हमको सीखने बहुत मिलता है तो सीखते रहना चाहिए, चाहे वो शिक्षा प्राप्त करना हो या अपने काम से संबंधित चीजें हो। मैं अभी भी जो चीज जिस यूनिवर्सिटी में अच्छी होती है मिशन से संबंधित, तो मैं जरूर वहाँ जाती हूँ और सीखने की कोशिश अभी भी करती हूँ। तो यही बात है कि बस आप अच्छा काम करते जाइए, रास्ते आप बनते जाते हैं, उन रास्तों को पकड़ना उससे सीखना ये हमारी जवाबदारी होती है।
जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मेहनत कभी मत छोड़िए जीवन में, और आपको ढेर सारे अवार्ड के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये चाहते हैं कि आपकी जो रोशनी की ओर जो बढ़े हुए हैं कदम, उससे दूसरों की राहें भी रोशन हो। कायदा हम समय समय में आपसे ट्रेनिंग भी लेते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन भी लेते रहेंगे, और अपना अमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और तहे दिल से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह हम हर बात के श्रोताओं से जुड़े रहें और लोग मशरूम खाते रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी इच्छा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जी एक श्रोताओं को एक बात और बता दूं कि नम्रता जी के यदि फार्म हाउस में गए मशरूम की खेती देखने, तो हो सकता है कि मशरूम के भजिए खाने को भी मिल जाए। बहुत प्रेम से खिलाती है आप।
जी जी मैं चाहती हूँ कि मशरूम की कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग चाव से खाएं, और जो हमारी भारतीय हमारे रेस्टोरेंट की परंपराएं हैं उसका भी हम निर्माण करते हैं।
जी तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपको फिर धन्यवाद देते हुए हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते।
जी नमस्ते।
अभी आप सुन रहे थे मशरूम उत्पादक श्रीमती नम्रता घई के साथ अर्पा रेडियो की एंकर संगीता अग्रवाल के साथ बातचीत।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।